exato. Essa é a tafsir, ou essa fagra, né? Explica, né? Screen الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب العالمين. تو ہم سورہ انعام کی ان آیات کی تفسیر پڑھنا شروع کر چکے تھے پچھلی کلاس میں. ترجمہ مکمل ہو گیا تھا, پھر خلاصہ تفسیر ہم پڑھ رہے تھے جو کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن سے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمایا کرتے ہیں. تو اس میں ہم نے آخری بات جو پڑھ لی تھی وہ تھی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا یعنی یہود اور نصارہ کا ذکر کیا کہ والذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ جن کو کتاب ہم نے کتاب دی, یعلمون وہ جانتے ہیں, انہ منزل من ربک بالحق, کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے, ٹھیک ٹھیک بالکل صحیح صحیح حق کے ساتھ نازل شدہ ہے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ, سو آپ شبہ کرنے والوں میں نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ اپنے اس میسج پر ڈاؤٹ کرنے والوں میں شامل نہ ہو جائیں, یا ان ایسے نہ ہو جائیں جو کہ اپنی بات ہی کا اس کو پتہ نہ ہو کہ پتہ نہیں میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ صحیح بھی ہے کہ یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جیسے کوئی بات کرے نا بندہ کہ بھائی ایسا کام کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ کام کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے, اور اگر کام ایسے نہ کیا جائے بلکہ کسی اور طریقے سے کیا جائے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, اب یہ بات کسی نے کر دی, لیکن وہ کر تو دی, لیکن اس کے بعد جو ہے نا وہ گھر آ کر کے سوچ رہا ہے کہ یار میں نے یہ اگلے بندے کو بات کہہ تو دی ہے کہ ایسا کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور ایسا نہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے, لیکن پتہ نہیں اللہ ہوتا بھی ہے راضی کہ نہیں ہوتا, ہے نا بھائی, پتہ نہیں اللہ ایسا نہ کرنے سے ناراض ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا, یہ نہیں پتا مجھے, ہے نا بھائی, اس کے بارے میں میں خود شیور نہیں ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں آپ تو خود اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا کہہ رہے ہیں, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کا بھی یہ تقاضا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے. اور تفسیر چونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اور جگہوں پر بھی ایسے کرتے ہیں کہ بات کہتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہیں لیکن مراد جو ہے وہ امت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ڈائریکٹلی نہیں ہوتے بلکہ امت مراد ہوتی ہے, کہ امت کو جو ہے نا یہ پیغام مل جائے کہ تم لوگ جو ہے نا وہ اپنے پیغام میں کے بارے میں خود شک میں مت مبتلا رہو, کہ تم اگلے بندے کو تو نیکی کی طرف بلا رہے ہو کہ بھئی نیکی کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے, اور خود تمہیں دل میں یہ شک ہے کہ پتہ نہیں ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا, ہے نا, اور گناہ کرنے کے اوپر تم لوگوں کو تو بول رہے ہو کہ سزا ملتی ہے اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور جہنم ملے گی, اور پھر جو ہے نا وہ تم خود ہی اپنے دل کے اندر یہ پتہ نہیں ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی, है, कुछ नहीं होता, मैंने तो फलाने शख्स को देखा था, वो तो बहुत गुनाह कर रहा था, लेकिन उसकी तो जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही थी, है ना भाई। तो अपनी नजर से जो चीज नजर आ रही है, अपनी आंखों से जो चीज नजर आ रही है ना, तो उसके ऊपर ज्यादा एतमाद है। लेकिन जो नबी अलैहिस्सलाम का दीन मिला है आगे पहुंचाने के लिए, तो उसके ऊपर एतमाद नहीं है, है ना, उसके ऊपर शक में मुब्तला है। तो ये गलती जो है वो हम भी बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। ये बात नहीं मानते कि भाई ये जो दीन की हमें तालीम दी जा रही है, जो बातें हमें समझाई जा रही है ना, इनका ताल्लुक डायरेक्टली अल्लाह ताला की रजा और अल्लाह ताला की नाराजगी के साथ है, ठीक है ना। अब मेरे पास एक साहब आए, मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ, और अनफॉर्चुनेटली ये मिसाल बहुत आम है, तो मैं एक एक साहब की आपको मिसाल बता रहा हूँ ना, ठीक है। हम कुछ बातें जो है वो आपको अंदाजा हो गई कि हम अपनी क्लासेस के अंदर, बयानात के अंदर, और इवन निजी मुलाकातों के अंदर ही हम बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं कुछ बातों, ठीक है। तो पता ही आप लोगों को, उम्मीद है कि जो पुराने हैं उनको तो पता ही होगा, तो नए हैं उनको भी पता चल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। कि भाई ये जो ये जो तौर तरीके हैं ना, ये हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, ये काफिरों ने, अल्लाह के दुश्मनों ने मुसल्लत किए हैं कि फलाने को ऐसा काम करना चाहिए, फलाने को ऐसा काम करना चाहिए, है ना। सारा का सारा मसला हमारे मुआशरे के अंदर उन्होंने खराब कर दिया है, ठीक है, बिल्कुल बहुत ही बेड़ागरा कर दिया हमारा, ठीक है। तो अब हम बार बार ये बात समझाते हैं कि भाई उनके बताए हुए तौर तरीकों को जो है ना वो फॉलो करने में हमारी कामयाबी नहीं है, बल्कि हमारी नाकामी है। हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते जब तक हम उनके बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारें, ठीक है ना। तो अब उसमें मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं किसी की जाती बात कर रहा हूँ उस वक्त, नाम तो जाहिर है उनका लेना भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे शानों से भी फिर पता चल जाता है ना, इस वजह से मैं ज्यादा तफसील में नहीं जा रहा। तो एक दिन वो मेरे पास आए, कहने लगे कि वो जो बात आप बहुत ज्यादा कहते हैं ना, तो मैं वो नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। तो मुझे पता है कि आप उससे आप ये सुनकर के बहुत नाराज होंगे, ठीक है ना, मुझे पता है कि आप सुनकर के ना बहुत नाराज होंगे। तो वो जिस किस्म की बात कह रहे थे ना कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, वो इतनी सीरियस बात थी, इतनी सीरियस बात थी, यानी छोटी मोटी गलतियां तो इंसान सभी करते हैं ना, ठीक है। हम उस गलती की बात नहीं कर रहे थे, हम वो तो यानी जिस तरह से बात कर रहे थे ना, तो बहुत सीरियस बात थी, ठीक है। तो जब उन्होंने ये बात कही ना कि मुझे पता है कि आप नाराज हो जाएंगे, तो मुझे तो लग गई ना चुप, मैं चुप हो गया एकदम ना थोड़ी देर के लिए, और अजीब मेरी कैफियत हो गई, एंड आई डिडंट से एनीथिंग, ठीक है, थोड़ी देर तक बिल्कुल खामोश। और फिर मैंने उनसे कहा कि अगर ये आप समझे हैं ना, अगर आपकी समझ में इतने सालों में ये बात आई है कि फलानी बात करने से या ना करने से मैं नाराज हो जाऊंगा, तो आपने कुछ ना सीखा, आपने कुछ ना सीख के दिया, ठीक है। कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि इट्स अबाउट मी, मैं मेरा, यानी मैं मेरी बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, अगर आप समझते हैं कि मेरी नाराजगी और मेरी खुशी ये इसका ताल्लुक है इस वाले अमल के साथ, तो भाई फिर आपने तो कुछ ना सीख के दिया ना, या आपने तो यानी यही समझा कि गोया कि मैं जो हूं ना, जो भी ये बातें कर रहा हूं क्लास के अंदर, जो भी बातें कर रहा हूं आपको बयान के अंदर समझा रहा हूं, और या प्राइवेटली आपको समझा रहा हूं, ये मैं अपनी नाराजगी और अपनी खुशी के लिए समझा रहा हूं, यानी इसका ताल्लुक सिर्फ मेरी जात के साथ है, अल्लाह के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, अल्लाह के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर फायदा क्या हुआ यार, यानी मैंने भी आपके ऊपर इतने सालों जो मेहनत करी वो भी जाया हो गई, और आपने जो इतना वक्त जो है वो यहां पे आने जाने में और सुनने सुनाने में लगाया, वो भी सारा का सारा जाया हो गया। अगर आप इन बातों को अल्लाह की रजा और अल्लाह की नाराजगी के साथ ज्वाइन नहीं कर सके, कनेक्ट नहीं कर सके, बल्कि आपके सोच का महवर जो है ना वो कोई इंसान ही है, बस इंसान की नाराजगी, इंसान की खुशी, तो क्या क्या फिर आपने समझा बात को? अब जब इस तरह से मैंने बात करी तो फिर भाई भाई नहीं 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 जी 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 मेरा मतलब यही था, जी, मेरा मतलब यही था, बस मैं मुझे बात करनी नहीं आती यार। ठीक है भाई, मैम बात करनी नहीं आती आपको, बड़ा हुँ? तो यानी ये भी होता है कि बंदा जो है वो खुद लोगों को दावत दे रहा है लेकिन खुद उसके ऊपर एतमाद नहीं, कि इसका ताल्लुक जो है ना वो वाकई अल्लाह की रजा और अल्लाह की नाराजगी के साथ है। जो हम दीन की तालीम दे रहे हैं ना, ये हम ये नहीं कि भाई एक माहौल बन जाएगा घर के दुनिया के अंदर और लोग जो है वो एक तरीके से अमल करना शुरू हो जाएंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। नहीं भाई, इसका ताल्लुक डायरेक्टली अल्लाह के साथ है, परवरदिगार के साथ है, खालिक के साथ है, मालिक के साथ है, राजिक, वो एक ही जात है ना जो सब कुछ है। ये ऐसा नहीं है कि लोग खुश हो जाएंगे और लोग जो है वो सर्टेन तरीके से बस ठीक ठाक हो जाएगा सब कुछ, बस खलास दुनिया जन्नत बन गई है? दुनिया में जो है वो अपनी मर्जी पूरी होनी शुरू हो गई, वाह 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 क्या बात है जी, दीन का दीन के फायदे हासिल होने शुरू हो गए दुनिया के अंदर क्योंकि दुनिया अब जन्नत बन गई। नहीं, ये बिल्कुल गलत सोच है, अगर किसी की है तो वो बिल्कुल गलत सोच है। इस दीन का ताल्लुक इस दुनिया की कामयाबी के साथ कोई कोई नहीं है, थोड़ी बहुत हो गई तो हो गई बस, वरना कुछ नहीं होती यहां पे कामयाबी। सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा कामयाब हो गई दुनिया में, कितनी तकलीफ और शदीद अजियत के साथ इस दुनिया से जो है वो उनको रुख्सत होना पड़ा है। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला जो है वो कामयाब हो गए, मक्का मुकरमा से जो है वो बाहर निकाल दिया उनको, घर बार छोड़ करके जो है वो दयार गैर में बैठे हुए, वहीं पे जाकर के जो है वो शहीद हो गए और बॉडी को भी मुसला कर दिया गया उनकी, तो वो कामयाब हो गए दुनिया के अंदर। दुनिया की तो कामयाबी उन्होंने देखी ही नहीं, राइट? तो भाई ये दीन जो है वो दुनिया की कामयाबी के लिए नहीं आया, दीन तो आखिरत की कामयाबी के लिए आया। दुनिया में तो अगर मिली भी ना किसी को कामयाबी, वो भी फीकी, वो भी टेम्पररी कामयाबी, बहुत ही जुज वक्ती कामयाबी। अगर किसी को मिली भी दुनिया में, वो भी जुज वक्ती कामयाबी और वो भी नाकिस कामयाबी। किसी चीज में मर्जी पूरी हो गई, बाकी चीजों में फिर भी मर्जी पूरी नहीं होती। कोई एक चीज की मर्जी पूरी हुई, बाकी चीजों में फिर भी मर्जी पूरी नहीं होगी तुम्हारी। तो दुनिया के ऊपर क्यों जा यानी हाथ धो के पीछे पड़े हो दुनिया के, है ना, दुनिया वालों के पीछे पड़े हो। दुनिया वाले ठीक हो जाए, दुनिया ठीक हो जाए, दुनिया वाले ठीक हो जाए, दुनिया ठीक हो जाए, है ना भाई? अजीब व गरीब किस्म की बातें करते हैं। तो इसका मतलब यही है कि दीन को समझा ही नहीं है, राइट? चंद जो है वो टक्करें मारने के अमाल को जो है ना वो दुनिया वो दीन समझा हुआ है, और चक्कर काटने के अमाल को जो है वो दीन समझा हुआ है। बस यही दीन है आपका, ऐसे कर लो वैसे कर लो, वैसे कर लो वैसा ना कर लो, ऐसे करो वैसा ना करो, अल्लाह की तरफ कनेक्शन, आखिरत की तरफ फोकस से महरूम। ठीक है, तो यही हो गया ना कि आपको यानी शुबा है कि ये जो सारे काम है इनका ताल्लुक आखिरत के साथ है भी कि नहीं है, अल्लाह के रजा के साथ है भी कि नहीं है, आप खुद ही शुबे में पड़े हुए। तो नबी अलैहिस्सलाम का ऐसा मामला नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाते हुए हमें, मुझे और आपको कह रहे हैं कि शक में मत पड़ो तुम, ठीक है? और आगे फिर फरमाते हैं, एक मिनट किसी ने मैसेज आया हुआ, स्कूल कॉलेजेस के टॉपिक पर कभी कभी हमें भी ऐसा ही शुबा होने लगता है, दीनदार लोग कहते होते हैं और उनके साथ बात करते हुए ऐसा होता है। जी, शैतान जो है वो शुबे में डालता है ना, उसको पता है कि जब आप दीन के बारे में शुबों में पड़ जाएंगे तो बस फिर आपका दीन खत्म हो गया, आपका ईमान जो है वो शक से जाहिर हो जाता है। अगर आप शक में पड़ गए तो फिर ईमान जाहिल हो गया, वसवसों की वजह से ईमान जाहिल नहीं होता, लेकिन शक में पड़ जाने से ईमान जाहिल हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अल्लाह तआला हुक्म फरमा रहे हैं, वला तकुनन्ना मिनल मुमतरीन, ये अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी पर फिर अल्लाह ताला खुश नहीं होते, या ये नहीं होता कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता का जो जुमला है ना, ये इसने मरवा दिया है सबको, हम सबको मरवा दिया है, कुछ नहीं होता, यानी अल्लाह ताला कुछ नहीं कर सकता और अल्लाह ताला के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तुम कुछ करो उसके साथ, यानी भाई बेशक अल्लाह की अजमत में कोई कमी नहीं आ जाती और अल्लाह ताला की शान नहीं घट जाती अगर आप अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, तो इस तरह से तो वाकई कुछ नहीं होता अल्लाह ताला की अजमत के ऊपर या अल्लाह ताला के खजानों में तो कुछ नहीं होता, लेकिन आपके ऊपर तो होता है ना कि अगर आप अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो फिर आप अल्लाह ताला की रजा से तो महरूम हो जाएंगे ना, अल्लाह ताला की नाराजगी को तो मुस्तहक हो जाएंगे ना। जब ही आज का जो मॉडर्न एथियस्ट है ना, मॉडर्न एथियस्ट जो कि अल्लाह के वजूद का तो इनकार कर नहीं सकता, पिछले जुम्मे में भी काफी बात हुई थी, तो अब वो क्या कहता है कि नहीं नहीं अल्लाह इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि अल्लाह के, जिसको कहते हैं ना उर्दू में, कानों पे जू नहीं रेंगती, अल्लाह के माथे पे बल नहीं आता, मतलब आप कुछ करते जाएं अल्लाह ताला के साथ, आप अल्लाह की बेइज्जती करते हैं करते जाएं, अल्लाह ताला बिल्कुल पत्थर, अल्लाह ताला नाउज बिल्ला बिल्कुल पत्थर है कि उसको ना आप उसको खुश कर सकते हैं ना आप उसको नाराज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो यानी कोई खुशी और नाराजगी का कोई ताल्लुक ही नहीं अल्लाह ताला के साथ, ठीक है। तो भाई बेशक अल्लाह ताला मुतासर नहीं होते कि जिस तरह से एक इंसान मुतासर हो जाता है, ठीक है, लेकिन जब अल्लाह ताला ने अपने जजा और सजा का सिलसिला बनाया है तो ये जजा और सजा ही अल्लाह ताला की रजा से जजा मिलती है और अल्लाह ताला की नाराजगी से सजा मिलती है। तो भाई ये जजा और सजा को भी आप खत्म कर दिया, इसका मतलब है आपने कि नहीं नहीं अल्लाह ताला कुछ नहीं करता है, बस कुछ करते रहो आप अपनी मर्जी से, जो चाहे करें, अल्लाह ताला ने कुछ नहीं करना, ना जजा देनी है ना सजा देनी है, बस जो मर्जी आए खुद करो, जो मर्जी करो। ये मॉडर्न एथियज्म है, दिस इज मॉडर्न एथियज्म, और यही क्या है असल में, ये क्या है, ये दीन का इनकार है, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन का इनकार, रिसालत का इनकार, शरीयत का इनकार, अल्लाह ताला के हुक्मों का इनकार, यही है मॉडर्न एथियज्म, ठीक है। एथियज्म का मतलब आज के दौर में यही है, ठीक है, और लोग नहीं समझते तो फिर अजीब अजीब यानी ऐसी बातें करना शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े दीनदार और अल्लाह की अजमतें बयान कर रहे हैं लेकिन शरीयत का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह की यानी अल्लाह ताला की जो है ना वो बेहतरीन सिफात बयान कर रहे हैं लेकिन अल्लाह ने जो दीन भेजा है उसका इनकार कर रहे हैं, और समझ रहे हैं कि हमने तो अल्लाह की बड़ी अजमत बयान करी, हमने तो अल्लाह का बड़ा जिक्र किया है, अल्लाह का जिक्र किया है इस बंदे ने, वाकई ऊपर से देखा जाए तो वाकई अल्लाह का जिक्र कर रहा है, लेकिन दीन का इनकार करके ये जन्नत में तो नहीं जाएगा, ये तो जहन्नुम में जा रहा है ना, अल्लाह का जिक्र करने का क्या फायदा जब तुम अल्लाह के दीन का इनकार कर रहे हो, अल्लाह के हुक्मों का इनकार कर रहे हो, ठीक। लेकिन लगे हुए इसके अंदर जिक्र करने में, जाकिरीन बने हुए अपने सो कॉल्ड अपने हिसाब से जाकिरीन बने हुए, तो बहरहाल शुभों में मत पड़ जाइए, शुभा करने वालों में मत हो जाइए, ठीक है। अच्छा तो ये फिर सिफतें चल रही थी ना, जो हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान के कमाल की मुख्तलिफ सिफतें, कि भाई ये सिफत कमाल है कुरान मजीद को हासिल, ये सिफत कमाल है इस कुरान मजीद को हासिल, तो उनमें से पहली हमने पढ़ ली थी एजाज, दूसरी तंजीलुम मिन अल्लाह, ये इसकी एक सिफत है अल्लाह कुरान मजीद की कि वो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा है, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया हुआ है, और फिर तीसरी सिफत हमने पढ़ी थी कि उसके मजामीन खूब साफ साफ बयान किए गए मुफस्सल, ठीक है, समथिंग देयर इज यानी तफसीली, तो वो मुफस्सल बयान किए गए ना, साफ साफ बयान किए, यानी गोल मोल बातें नहीं की गई है उसके अंदर, ठीक है, कि मतमय नजर जो है ना वो किसी को भी, चाहे वो जाहिल हो उसको तो वैसे भी समझ में नहीं आती बातें, लेकिन कोई आलिम भी हो ना तो किसी की गोल गोल बातें जो है वो तो आलिम को भी समझ में नहीं आएंगी, भाई क्या बोल रहा है ये, क्या मैंने इल्म बड़ा हासिल कर लिया है लेकिन गोल गोल बातों को समझने का तो इल्म हासिल नहीं किया मैंने, ठीक है। तो कुरान मजीद में गोल गोल बातें नहीं है, कुरान मजीद में अरबी जुबान के अंदर बड़े मुफस्सल तरीके से अहकाम बयान किए गए, अगर कोई इल्म हासिल करे तो फिर उनको समझ सकता है, जैसे फुकहा ने समझ लिया, उलमाए कराम जो इस दर्जे का इल्म हासिल करते हैं वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा कमाल है कुरान मजीद के अंदर कि मुफस्सल अहकाम इसके अंदर बयान किए गए ना। चौथा कमाल इसका कि हमने पढ़ लिया था कि जो अहले किताब हैं उनको जो निशानियां हमने उनकी किताबों में बता दी थी, उनके नबियों के वास्ते से बता दी थी, वो सारी निशानियां इस कुरान मजीद के अंदर पूरी हो गई। ये चौथा कमाल हुआ कुरान मजीद का। ठीक है, और पांचवा वस्फे कमाल जो अब हम पढ़ रहे हैं, पांचवा वस्फे कमाल इसका ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब का ये कलाम वाकईयत और एतदाल के एतबार से भी कामिल है, नाकिस नहीं है, कि वाकईयत और एतदाल। वाकईयत का मतलब कि जो वाकया इसके अंदर है वो बिल्कुल पक्का सच्चा ठक्का वाकया है। ठीक सिद्क सच्चा। ठीक है, तो सच्चे वाकया आते हैं इसके अंदर कि उसको जजा मिली। अगर कुरान मजीद ये कह रहा है यूसुफ अलैहि सलाम के साथ ये वाकयात हुए और फिर यूसुफ अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी इज्जतें अता फरमाई, तो ये सच बात है। ठीक है, अल्लाह ताला इज नॉट मेकिंग स्टोरीज अप कि अपनी तरफ से नसीहत के लिए जो है ना वो कोई घड़ लिया, और हुआ नहीं था ये मामला ऐसा, बल्कि बस एक कहानी घड़ ली नसीहत करने के लिए, जैसे हम लोग नसीहत करने के लिए कहानी घड़ लेते हैं ना। ठीक है, अल्लाह ताला ने कहानियां घड़ी नहीं है, बल्कि वाकया वैसे ही हुआ जैसे कुरान मजीद में बयान, उसी तरह सजा का भी वाकया जैसा जैसा हुआ वैसा ही बयान किया। तो ये हो गई सिदकन की तशरी, वाकईयत बिल्कुल सच्ची है। और एतदाल के एतबार से क्या मतलब कि यानी जो अल्लाह ताला ने अहकामात उसमें दिए हैं कुरान मजीद के अंदर, वो अहकामात बिल्कुल मुतदिल रास्ते पर है ना, उनके अंदर एक्सट्रीम यानी उनमें एक्सट्रीम कोई नहीं है, ना ज्यादती है उनके अंदर इतदाल के रास्ते से, ना कमी है इतदाल के रास्ते से। ठीक है, तो ये जो अहकाम अल्लाह ताला ने दिए हैं, पांच नमाजें, ठीक है, तो इस उम्मत के लिए पांच नमाजें, तो इस उम्मत के लिए पांच नमाजें ना तो टू मच हैं और ना टू लिटिल हैं। ठीक है, पिछली उम्मत को अल्लाह ताला ने दो नमाजें दी थी, तो उनके लिए दो नमाजें जो दिन में 24 घंटे के अंदर दो नमाजें होती थी वो टू मच या टू लिटिल नहीं थी, वो उनके लिए बिल्कुल मोतदिल रास्ता था। ठीक है, लेकिन इस उम्मत के लिए पांच नमाजें मोतदिल रास्ता है जो इस कुरान में दिया, ना टू मच ना टू लिटिल। ठीक है, ये तो नमाज से, ठीक है ना भाई, किसी को शक तो नहीं है इसके अंदर कि इस उम्मत में पांच नमाजें जो है ना वो बहुत ज्यादा दे दी, क्योंकि पिछली उम्मत में जो है वो दो दी थी, तो इस उम्मत में जो है वो पांच, तो फिर टू टू मच हो गया ये। नहीं, अल्लाह ताला ने इंसान के हालात को भी तो तब्दील किया है ना। ठीक है ना, उस जमाने के इंसान जो थे ना वो जिस मिजाज के साथ और जिस तबीयत के साथ पैदा किए थे अल्लाह ताला ने, उस तबीयत और उस मिजाज में दो नमाजें, उससे ज्यादा नहीं। इस उम्मत में जो मिजाज अल्लाह ताला ने यानी नबी अलैहिस्सलाम के आने के बाद इंसानों का मिजाज अल्लाह ताला ने ऐसे मॉडिफाई कर दिया। बहुत अहम नुक्ता आपके सामने बयान कर रहा है आज, उम्मीद है कि आप कोशिश करके समझ रहे होंगे। ठीक है, इस उम्मत के इंसानों का अल्लाह ने मिजाज ऐसा बना दिया कि उनके लिए पांच नमाजें मोतदिल रास्ता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई सबको। अब नमाजों का मसला हो गया, अब एक दूसरा मसला, ठीक है, वो क्या आप बता दें, किसी के ध्यान में आता है कि अल्लाह ताला का एक और हुक्म जो पिछली उम्मत के लिए मुख्तलिफ था और इस उम्मत में मुख्तलिफ है, वो क्या? रोजा। जी ठीक है, वैसे तो अल्कोहल का भी था, ठीक है, किसी ने शराब का भी है कि भाई शराब जो है वो पहले हराम नहीं थी, तो अल्लाह ताला ने ऐसी तबीयतें बनाई हुई थी कि वो शराब को किसी ना किसी दर्जे में वो हैंडल कर लेते थे, ठीक है, और उसके साथ ही जो है वो काम चल रहा होता था उनका। और इस उम्मत के पास इतनी सलाहियत नहीं है कि वो शराब को हैंडल कर सके, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने, भाई अल्लाह ताला ने सिर्फ अहकाम तो नहीं दिए ना, ठीक है, अल्लाह ताला ने इंसान की बायोलॉजी भी तो अल्लाह ही ने बनाई है ना, इंसान की एनाटमी, इंसान का जो सर्कुलेशन सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, वो किसका, वो किसी और का बनाया हुआ है, और अहकाम अल्लाह के बनाए हुए हैं, लेकिन हमारी बायोलॉजी किसी और की बनाई हुई है ना भाई। ऐसा होता है ना, हमारे लिए तो ऐसे ही होता है कि भाई इंसान की बॉडी तो किसी और ने बनाई है, चाहे वो मानने वाले कहें कि अल्लाह ने बनाई है, या पुरानी एथियस्ट कहें कि नहीं, खुद बखुद बन गई है। अब डॉक्टर साहब जो है ना, वो लगे हुए हैं कि किसी तरीके से, तजुर्बे के जरिए से ये मालूम करने कि इस बॉडी के लिए कौन सी चीज मुफीद है, कौन सी चीज मुजर है। अब वो तजुर्बों से लगे हुए हैं मुफीद और मुजर को मालूम करने के लिए, ठीक है, क्योंकि बॉडी इन्होंने खुद नहीं बनाई ना, ये जो डॉक्टर्स होते हैं, ये जो तबीब होते हैं, इन्होंने तो नहीं बॉडी बनाई। तो अब ये तजुर्बाती तौर पर फिर हेल्थी फूड्स बताते हैं, और फिर वो दवाएं बताते हैं, वो तजुर्बात कर करके बताते हैं ना फिर, क्योंकि क्यों क्यों तजुर्बे करने पड़ते हैं उनको, इसलिए कि उन्होंने बॉडी बनाई खुद नहीं है, वो मैन्युफैक्चरर नहीं है बॉडी के। हम समझते हैं अल्लाह का भी यही मामला है, अल्लाह ताला ने हमें बनाया कि थोड़ी है, लेकिन अल्लाह ताला ने ऊपर से अहकामात दे दिए कि ऐसे करोगे तो फायदा होगा, ऐसे करोगे तो नुकसान होगा। अल्लाह ने बनाया नहीं है हमें, ये गोया के ना हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है कि जैसे अल्लाह ने नहीं बनाया, तो भाई किसने बनाया, अल्लाह ही ने तो बनाया है यार, ठीक है। तो अल्लाह ने हमें जो अहकाम दिए ना, कोई ये ट्रायल एंड एरर वाले अहकाम नहीं है कि चलो ट्राई करते हैं कि अगर तुम 5 नमाजें पढ़ लोगे तो तुम्हारे लिए, अगर फायदा हुआ तो फिर हम 5 फिक्स कर देंगे तुम्हारे लिए, और अगर तुम्हें 6 से फायदा हो गया तो फिर हम 6 बना देंगे तुम्हारे लिए फर्ज। नहीं, अल्लाह ताला को तो पता है, ठीक है। तो अब बनाया भी अल्लाह ने है ना, तो अल्लाह ताला ने पिछले दौर के इंसानों को डिफरेंट बनाया और इस दौर के इंसानों को डिफरेंट, मैन्युफैक्चर ही डिफरेंट किया। तो यही मामला पर्दे का भी है, ठीक है, कि भाई पीछे जो उम्मत थी ना, हत्ता के इवन नबी अलैहिस्सलाम के आने के बाद भी, 13 प्लस 5 कितने बनते हैं, 18 साल, ठीक है, 18 साल तक जो लोग थे ना, वो औरत को हैंडल कर सकते थे, ठीक है, औरत को हैंडल करना उनके लिए मुमकिन था, कि बगैर पर्दे के, बगैर सेपरेशन के, बगैर जो है वो सेग्रीगेशन के, औरतों के साथ मामला चल रहा है, कोई कोई ऐसा मसला नहीं है, कभी गलती तो हो जाती है भाई, कभी ना कभी, ठीक है ना। तो गलती तो इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया का हिस्सा है गलती होना, लेकिन रूल एज अ रूल कि नहीं भाई ये नुकसानदेह है, ये रूल नहीं था कि अगर आप औरतों के साथ जो है वो इख्तलात वाले माहौल में रहेंगे तो लाजमन गड़बड़ होगी। नहीं, इंसानों की अल्लाह ताला ने तबीयत और मिजाज जो है वो उस वक्त डिफरेंट बना के रखा होता है, इस वजह से शरीयत के अंदर पर्दा था ही नहीं। अब जो पर्दे का हुक्म आया है ना, 5 हिजरी के अंदर जो पर्दे का हुक्म आया है, तो ये ऐसे ही नहीं आ गया, खामखामी नहीं आ गया, बल्कि अल्लाह ताला ने मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस किए हैं, है ना भाई। जिस तरह अब अपडेट नहीं करते, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, जब सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है तो फिर अब उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं, है ना भाई। तो 5 हिजरी में ह्यूमन सॉफ्टवेयर, ह्यूमन जो सॉफ्टवेयर का लफ्ज वही इस्तेमाल करने में उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, तो वो जो है ना, अल्लाह ताला ने एक अपडेट भेजी है ऊपर से, 5th हिजरी में ह्यूमन साइकोलॉजी में अल्लाह ताला ने एक अपडेट डाउनलोड करी है, और उस अपडेट के मुताबिक फिर अल्लाह ताला ने ये हुक्म पर्दे का नाजिल किया है। ऐसे ही नहीं नाजिल कर दिया, ट्रायल एंड एरर के तौर पर ही नाजिल, करो तो अच्छा है, चलो फिर वरना नहीं करोगे तो कोई, वी विल फिगर समथिंग आउट, समथिंग एल्स आउट, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट अल्लाह, हम किसी दुनियावी तबीब और दुनियावी डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। क्या लिखा उन्होंने कि रूहानी एतबार से मिजाज की वजाहत भी फरमा दें, क्या इबादत से रगबत नहीं थी या फिर अब उम्र कम होने की वजह से मोहलत कम है। हाँ कोई भी रीजन हो सकती है, ठीक है, इबादत से रगबत कम थी या उनके दूसरे हालात थे इस तरह से कि उनके लिए दो नमाजें, उनके लिए दो नमाजें मुतअद्दल थी, ठीक है, उनकी उम्रें ज्यादा होती थी। हाँ ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि उनकी उम्रें बहुत ज्यादा होती थी तो वो दो नमाजों के हिसाब से, और भी नफलें बहुत ज्यादा पढ़ते थे, ठीक है, जो इबादत गुजार होते थे तो वो है ना, वो शबे कदर क्यों मिली है मुसलमानों को, कि बनी इसराइल के अंदर एक बंदा था जो कि सारा सारा दिन रोजे रखता था और सारी 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 दिन जिहाद करता था और सारी सारी रात रोजे रखता था, और वो 1,000 साल तक वो ये काम करता था, ठीक है। तो करने वाले तो शायद कम होंगे उनमें, लेकिन अल्लाह ताला ने इस्तेदाद सबको दी थी, लेकिन किसी किसी ने उस इस्तेदाद को इस्तेमाल किया और वाकई इबादतें करी भी, और किसी किसी ने उस इस्तेदाद को इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन इस्तेदाद तो अल्लाह ताला ने पूरी कौम को दी थी ना, उस जमाने के सारे लोगों को दी थी ना, ठीक है। तो इस वजह से कोई ये समझे कि बनी इसराइल में जो है ना वो सब लोग बड़ी इबादत किया करते थे, नहीं ऐसा तो नहीं है कि सब लोग बड़ी इबादत किया करते थे, ठीक है, लेकिन इस्तेदाद तो सबको एक जैसी मिली होगी, है ना, ठीक है, एक जमाने के लोगों को। अच्छा तो बाकी जो भी है ये सजदे वाला कि दे कैन डू सजदा एनी वेयर, दे कैन नॉट डू सजदा एनी वेयर बट वी कैन, हर चीज का ताल्लुक जो है ना वो हमारे सॉफ्टवेयर के साथ है, ठीक है। हार्डवेयर तो तकरीबन सबका सेम ही है ना, इवन पिछले जमाने के लोगों का हार्डवेयर भी वैसे ही था जैसे कि हमारा हार्डवेयर है, क्या मतलब, उनके भी दो ही हाथ होते थे, उनके चार हाथ नहीं होते थे, हमारे भी दो ही हाथ होते हैं, है ना भाई, 2,000 साल पहले का इंसान, उसके भी दो ही कान होते थे, उसकी भी एक ही नाक होती थी, उसके भी दो ही आंखें होती थी, तो हार्डवेयर तो उनका भी वही था जो कि हमारा है, ठीक है, लेकिन अंदर से सॉफ्टवेयर अपग्रेड जो है ना वो तो इंसानियत का होता रहा है ना, अल्लाह ताला उसके हिसाब से फिर शरीयत के अहकामात भी चेंज करते रहे हैं। तो वाकईयत और एतदाल के एतबार से भी कामिल है। अब हमारा मसला ये कि जी हम नबी अलैहिस्सलाम के रास्ते को जो कि हमें कुरान के जरिए से मिला और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के जरिए से मिला, हम उसको जो है ना वो एतदाल का रास्ता कहने की बजाय आज के दौर में हर वक्त कोई जो है वो जापान को एतदाल का रास्ता, कि जापान कितना अच्छा मुल्क है, कितना जबरदस्त वहां पे सिस्टम चलता है, और कोई जो है वो सिंगापुर को जो है वो एतदाल का रास्ता, देखो सिंगापुर का सिस्टम कितना जबरदस्त काम करता है, कोई जो है वो स्वीडन का रास्ता, कोई अमेरिका का रास्ता, कोई जो है वो चाइना का रास्ता, कोई जो है वो फलाने का रास्ता, उन्हीं की तारीफें, अल्लाह के बंदे तुम्हें यानी मुसलमान कहलाते हो, अपने आप को मुसलमान कह करके खुश भी होते हो, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है कि इस्लाम पे खुश होते हो, अपने इस्लाम पे, लेकिन इस्लाम तो तुम्हें चाइना से मिलेगा, तुम्हें इस्लाम जो है वो सिंगापुर से मिलेगा, इस्लाम तो भाई नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मिलेगा और कुरान मजीद से मिलेगा, ठीक है, तो नहीं ये नहीं करना, उधर ही जा करके ना वहीं से जो है वो रास्ते उनकी तारीफें करना, तो भाई कुछ 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 शर्म करना चाहिए ना, कुछ शर्म करनी चाहिए, ठीक है। आपकी अम्मी जो है वो आपको बेहतरीन खाना बना करके दें और आप जो है ना आप अपनी अम्मी के सामने आकर के वो जो गली के कोने पर जो आंटी रहती है ना उनका इतना बेहतरीन खाना होता है, ओहो मुझे एक दफा मौका मिला था, मेरे दोस्त ने वो खाना खिलाया आंटी का, वो तो बेस्ट खाना था दुनिया का, बेस्ट बेस्ट खाना था, है ना भाई, अम्मी के सामने ये आकर के बोल रहा है, कौन बोल रहा है, अम्मी का अपना बेटा, ठीक है। और फिर थोड़ी दिन के बाद आए और कह के नहीं उस तरफ उस काउंटर पे जो आंटी रहती है ना उनका जो खाना मैंने आज खाया है ना, ओ हो उससे अच्छा तो कोई खाना हो ही नहीं सकता, वही खाना, दिस इज व्हाट खाना इज सपोज टू बी लाइक, है ना भाई, अम्मी के सामने आकर के ये बोल रहा है, और अम्मी जो है वो तो ऐसी नाउज बिल्ला बिल्कुल पत्थर है कि उनको तो ना खुशी हो रही है ना कोई गम हो रहा है, बस वो तो सुने जा रही है अपने बेटे की बात, कभी किसी आंटी की तारीफ करे चला जा रहा है, कभी किसी आंटी की तारीफ करे चला जा रहा है, और अम्मी के खाने जो ये इन्होंने सारी जिंदगी इसको अच्छे अच्छे बेहतरीन खाने बना करके खिलाए, उधर जो है ना ये तवज्जो ही नहीं कर रहा। ठीक है ना, उम्मीद है कि इस मिसाल से हमें अपनी कैफियत समझ में आई होगी कि जब हम किसी भी दूसरे की तारीफ करते हैं कामयाबी के लिए और परफेक्शन के लिए और इतदाल के लिए, हम अल्लाह ताला को और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कितना यानी दुख भी पहुंचा रहे होते हैं और कितना ज्यादा जो है ना वो उनको हम चैलेंज भी कर रहे होते हैं और कितना ज्यादा जो है वो हम नाशुक्री और यानी यू नेम इट क्या से क्या बुराइयां हम कर रहे होते हैं। ठीक है, और फिर कहते हैं जी पता नहीं क्यों मेरे हालात ही अच्छे नहीं होते, पता नहीं क्यों जो है वो हमारे हालात ही अच्छे नहीं होते, पता नहीं क्यों ऐसा होता है वैसा होता है। ठीक है जी, अच्छा तो उलूम व अकायद में वाकईयत और आमाल जाहिरी और बातनी में एतदाल लिए हुए है ये, और छठा वसल कमाल इसका ये है कि इसके इस कलाम का कोई बदलने वाला नहीं है, ना मुबद्दिला लिकलिमाती, किसी की मजाल नहीं यानी किसी की तहरीफ और तगैर से या तगीर से इसका अल्लाह मुहाफिज है। वह इन्ना लहू लहाफिजून, इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिजून, ये कुरान मजीद का छठा वस्व कमाल है। अल्लाह ताला इसके लिए अपनी मखलूक को इस्तेमाल करते हैं जैसे भी करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला मेक श्योर के इस कुरान को जो है ना वो तब्दील ना किया जा सके। अब वो इसके लिए छोटे बच्चों को इस्तेमाल करते हैं या बूढ़ों को, बड़े यानी हाफिज कुरान, तो हाफिज कुरान जो होता है वो तो अल्फाज कुरान को महफूज कर लेता है और कोई प्रिंटिंग प्रेस में जा करके कुरान को चेंज कर दे वो हाफिज कुरान के सीने में तो चेंज नहीं कर सकता। वो हमारे हजरत भी वाकया सुनाया करते थे, वो बरतानिया ने जब कब्जा किया तो उसने जो है ना वो ये कुरान को खत्म कर दो, तो उसने कुरान जो है ना वो जलाने शुरू कर दिए या दरिया बुर्द करने शुरू कर दिए। तो एक आलिम जो है ना वो एक बच्चे को लेकर के आए उस अंग्रेज जर्नल के सामने जो कि ये हरकतें करवा रहा था, और उससे कहा कि आप ये जो कुरान मजीद को जला रहे हैं ना इससे कोई फायदा नहीं होगा, ये कुरान इस तरह से खत्म नहीं होगा। कैसे, मैं तो खत्म कर दूंगा कुरान मजीद को। तो उसने कहा कि आप इस बच्चे से ना जरा सा कुरान सुन लीजिए। उस बच्चे ने फिर कुरान मजीद की तिलावत शुरू करी, तो उसने कहा ये जो है ना कुरान मजीद किताबी शक्ल में खाली महफूज नहीं है, कुरान मजीद तो इंसानों के अनगिनत इंसानों के सीनों में महफूज है, आप किस किस सीने से इसको निकालेंगे। ठीक है ना, तो उनको बात समझ में आ गई, फिर उन्होंने कुरान मजीद के जो मसहफ थे ना उनका पीछा छोड़ दिया। ठीक है, फिर वो किस चीज के पीछे पड़ गए, वो फिर उलमा के पीछे पड़ गए, क्योंकि उलमा जो है वो कुरान मजीद के मानी के मुहाफिज होते हैं। उन्होंने कहा उलमा तो चलो फिर भी ना काउंटेबल है, गिनती के होते हैं, इनको हम मार देते हैं या इनको हम तब्दील कर देते हैं तो फिर इस कुरान मजीद के मसहफ का फिर क्या फायदा होगा, अल्फाज पढ़ करके क्या कर लेंगे ये लोग जब जब इसे हिदायत ही लेने के काबिल नहीं रहेंगे, तो अल्फाज पढ़ने का भी इनको क्या फायदा होगा। ठीक है, तो वो उस मेहनत में लगा हुआ है, आज भी इसी मेहनत में लगा हुआ है, लेकिन उसकी ये मेहनत भी कभी भी कामयाब नहीं होगी, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हिफाजत का जिम्मा लिया है, सिर्फ अल्फाज की नहीं बल्कि मानी की हिफाजत का भी अल्लाह ताला ने जिम्मा लिया हुआ है। तुर्की के अंदर क्या किया इन्होंने, तुर्की के अंदर इन्होंने दूसरी तरकीब इस्तेमाल करी, जब तुर्की पे कब्जा हो गया मुस्तफा कमाल अतातुर्क यहूदी का, जो कि असल में तो यहूदी था ऊपर से जो है वो मुसलमान बन गया था। ठीक है, और हमारे यहाँ तो उसको बहुत बड़ा हीरो समझा जाता है ना भाई, हमारे तो बस यही मामला है। तो खैर मुस्तफा कमाल अतातुर्क जो है ना तो उसने जब कब्जा कर लिया तो तुर्की के ऊपर, तो उसने दूसरी चाल चली, उसने कहा कि जी ये जो कुरान मजीद जिस लैंग्वेज में है ना हम उस लैंग्वेज को ही खत्म कर देते हैं अपने मुल्क से। तो तुर्की जुबान जो है वो पहले अरबी रस्म अल खत में लिखी जाती थी, उसने कहा नहीं तुर्की जुबान जो है ना वो अब अंग्रेजी रस्म अल खत में लिखी जाएगी, तो वो रस्म अल खत ही बदल दिया। अब कुरान मजीद को पढ़ना ही मुमकिन नहीं रहा किसी के लिए सवाए जो बहुत ही छुप करके जो है ना वो दीन के इल्म को सीख रहे थे, सवाए उन लोगों के किसी के लिए कुरान मजीद को पढ़ना ही मुमकिन नहीं रहा तुर्की के अंदर। हत्ता के फिर अल्लाह ताला इन चंद सालों के अंदर उसको भी खत्म कर दिया। कब तक जिंदा रहता वो मुस्तफा कमाल आता, तो बिलाखिर मर गया, जहन्नुम रसीद हो गया, ठीक है। और फिर उसके असरात भी जो है वो बहुत हद तक अब कम हो गए, खत्म तो नहीं हुए लेकिन बहुत हद तक वहां पर कम हो गए। तो कलाम को बदल नहीं सकोगे तुम, कुछ भी कर लो। अच्छा, और ऐसी कामिल दलील पर भी जो लोग तकजीब कल्बी व जुबानी से पेश आए, वो यानी अल्लाह ताला उनके अकवाल को खूब सुन रहे हैं, ठीक है। ये जो आगे एकदम से वह समीउल अलीम है ना, अब हमें तो समझ में नहीं आता कि ला मुबद्दिल कलिमाती के बाद ये वहुवा समीउल अलीम की क्या तुक बनती है, क्यों अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वहुवा समीउल है, वो सुनने वाला है। तो देखें अल्लाह ताला फिर अपने उलमा के दिल में तफसीर डालते हैं कि देखो मैंने जो असमीय का लफ्ज यहां पर इस्तेमाल किया ना, ठीक है, वो क्यों इस्तेमाल किया। तो देखें हजरत थानवी ने क्या बेहतरीन तफसीर करी है कि ऐसी कामिल दलील पर भी जो लोग तकजीब कल्बी यानी कल्ब से तकजीब कर रहे हैं, झूठा कह रहे हैं कुरान मजीद को, या जुबान से कुरान मजीद को झूठा कह रहे हैं, तो वो अल्लाह ताला जो है ना वो असमी है, वो खूब सुन रहा है उनकी बातों को, ठीक है, और उनके अकायद को खूब जान रहे हैं, यानी अल्लाह ताला खूब जानते हैं उनके अकायद को भी, अपने वक्त पर उनको काफी सजा देंगे। तो वो खाली सुनना और खाली जानना नहीं, बल्कि दे विल बी पनिश्ड, ठीक है। अल्लाह ताला उनके तमाम कामों से और बातों से और सोचों से वाकिफ है, अल्लाह ताला उनको सजा देंगे। ये वजह है कि अल्लाह ताला ने वहुव समीउल अलीम इस मौके पर बयान फरमाया कुरान मजीद के अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद वह इन तो अक्सर अमन फिर अर्द युदुल्लूक अन सबीलिल्लाह, अगर आप अतात करेंगे जमीन की रहने वालों की अक्सरियत की तो वो आपको ना अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर देंगे। तो उसकी तफसीर में फरमाते हैं कि और बावजूद वजूह दलायल के, यानी वाजह दलायल जो कि हमने दे दिए कुरान मजीद की के कमाल के, इसके बावजूद दुनिया में ज्यादा लोग ऐसे मुनकर और गुमराह ही है कि अगर बिलफर्ज आप उनका कहना मानने लगे तो वो आपको अल्लाह की राह यानी राह रास्त से बेराह कर देंगे, ठीक है, अगर आप उनकी अताअत करने लगे। देखें नबी अलैहिस्सलाम कितने अजीम है ना, इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, बेहतरीन अखलाक के ऊपर, ठीक है, बेहतरीन सिफात के ऊपर, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, अगर अताअत आप गलत बंदे की करना शुरू कर देंगे तो वो गलत बंदा आप जैसे इंसान को भी गुमराह कर देगा, आप जैसे इंसान को भी वो गलत बंदा गुमराह कर देगा, ठीक है। क्या समझ में आई, नबी अलैहिस्सलाम ने तो करनी ही नहीं थी ना, वही बात है जो पीछे हो चुकी है कि अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को तो फरमा रहे हैं लेकिन उम्मत को सिखाने के लिए ना, तो अब मेरे और आपके लिए क्या क्या बात आ गई कि अगर हमने अताअत शुरू कर दी, ठीक है, और अताअत का मतलब ये नहीं होता कि मारे बांधे की अताअत, अताअत का लफ्ज जो है ना यहां पर ये मफहूम अपने अंदर रखता है कि दिल से अताअत, ठीक है, कि उसी की अताअत को अच्छा समझ करके, उसी की अताअत को कामयाबी का जरिया समझ करके उसकी बात माननी शुरू कर दी, ठीक है, ये होती है अतात, ठीक है। तो अगर आपने किसी की भी अतात शुरू कर दी इस तरीके से कि वाकई उसकी अतात को आप अच्छा समझ रहे हैं, अपने लिए फायदेमंद समझ रहे हैं, तो फिर जो उसकी सोच होगी, जो उसका नजरिया होगा, जो उसकी राइट एंड रॉन्ग की डेफिनेशन होगी, वही आपके भी अंदर आ जाएगी, आपके अंदर भी मुंतकिल हो जाएगी, ठीक है ना। उसकी डेफिनेशंस, उसके आइडियाज, उसकी आइडियोलॉजी, वो आपके अंदर भी आ जाएगी, ठीक है। ये अल्लाह ताला ने उसूल बना दिया, ये इंसान की अल्लाह ताला ने यानी सॉफ्टवेयर बना दिया, ऐसा ही ऐसे ही फंक्शन करेगा ये, कि जिसकी भी ये कल्बी तौर पर अतात करेगा, यानी अच्छा समझ करके। मैं ये बात बार बार क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि आप कहेंगे भाई हमें करना पड़ता है लेकिन हम दिल से तो नहीं मानते, तो क्या हम भी उनके जैसे हो जाएंगे? भाई अगर आप दिल की कराहियत के साथ अगर किसी की अतात कर भी रही है ना, जो कि अच्छा बंदा नहीं है, लेकिन आपके दिल में कराहियत है, नफरत है बुराई से, फिर उसका नजरिया आपके अंदर नहीं आएगा, एज लॉन्ग एज आपके अंदर कराहियत और नफरत हो उसके लिए। लेकिन अगर लाइकनेस है उसके लिए या उसके नजरियात के लिए, तब तो आएगा, तब तो आएगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला अपने हबीब को कह रहे हैं, बेहतरीन इंसान को कह रहे हैं, अपने महबूब को कह रहे हैं, अगर आपने उनके अताब शुरू कर दिए ना, तो आप सीधे रास्ते पे नहीं रह सकेंगे, आप भी उन्हीं के रास्ते पे आ जाएंगे। तो जब अल्लाह के हबीब के साथ ये मामला, तो फिर हमारे साथ क्यों नहीं होगा भाई? हम कहते हैं नहीं, मैं बहुत नेक मुसलमान ही रहूंगी, लेकिन अताज जो है ना, वो तो मैं उनकी ही करूंगी जो, क्योंकि दुनिया में कामयाबी उन्हीं की, उनकी अताज नजर आती है। ठीक है, वो अताज तो मैंने उन्हीं की करनी है, लेकिन मैं रहूंगी नेकी मुसलमान ही, ये झूठ है, फरेब है, धोखा है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अपने आप को फरेब दे रहे हैं, अल्लाह के कुरान का भी इनकार कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह का कुरान अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि नहीं, तुम रह ही नहीं सकते सीधे रास्ते के ऊपर, पर आप अल्लाह के कुरान का इनकार कर रहे हैं। तो जब अल्लाह के कुरान का इनकार करेंगे, अल्लाह के कलाम का इनकार करेंगे, तो फिर कहते रहे अपने आप को मुसलमान, खुश होते रहे अपनी मुसलमानियत के ऊपर, लेकिन अब आप मुसलमान हैं नहीं, क्योंकि आपने अल्लाह के कुरान का इनकार कर दिया है। ठीक है, अब आप मुसलमान हैं नहीं, बेशक आप हजार मरतबा कहें कि मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। ठीक है, फरमा रहे हैं क्योंकि भाई उसकी वजह भी अल्लाह ताला ने एहसान किया हमारे बाहर, के अल्लाह ताला को इसकी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत तो नहीं थी कि क्यों ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने आगे ने आपको एक्सप्लेन किया, अपनी बात को एक्सप्लेन किया कि उसकी वजह यह है कि यत्तबिउना इल्लज़्ज़न व इनहुम इल्ला यख्रुसून, उसकी वजह यही है कि ये लोग जो है ना, वो हकीकत की इत्तबा करते ही नहीं है, ये तो अजम्पशंस की इत्तबा करते हैं, ये तो गुमानों की इत्तबा करते हैं। ठीक है, इन्होंने तो घड़ी हुई चीजें हैं अपने तौर पर कि ये कामयाबी है, वो नाकामी है, ये खुदा है, वो खुदा नहीं है, और वो खुदा नहीं है, और ये खुदा है, और ये खुदा का पैगाम लाने वाला नहीं है, और वो खुदा का पैगाम नहीं है, अपनी तरफ से इन्होंने घड़ी हुई है चीजें, तो इसको कहते हैं जन की इत्तबा करना। ठीक है, तो भाई जन की इत्तबा करने वालों की अगर आपने अतात शुरू कर दी, तो आप कैसे ठीक ठीक रास्ते पर रह सकते हैं? ठीक है, और फिर आगे दूसरी वजह भी बताई, इनहुम इल्ला यखरुसून, ये लोग तो सिर्फ जो है ना, वो घड़ने वाले ही हैं। ठीक है, गुमान को, यानी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, गेस, गेस वर्क। ठीक है, गेस वर्क को जो है वो फॉलो करने वाले हैं, तो बजाई से बात करें यानी आप गोया के कोई दीवाना हो, कोई मस्ताना हो, बिल्कुल ही ना अकल से पैदल किस्म का इंसान हो, तो वो कहे कि चलो चलो मैं तुम्हें जो हूं ना वो लेके चलता हूँ, मैं तुम्हें मस्जिद पहुंचाऊंगा। ठीक है, लेकिन वो है दीवाना, अब आप उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दें कि हाँ वाकई ये कह रहा था ना कि मुझे ये मस्जिद दे के जाएगा, तो मैं इसके पीछे पीछे चलती हूँ, तो मैं मस्जिद पहुंच जाऊंगी। भाई वो दीवाना है, आप ये नहीं देख रही कि वो दीवाना है, उसको तो पता भी नहीं होगा कि मस्जिद किधर है, उसको मस्जिद का रास्ता कहाँ से याद होगा, लेकिन अब आप उसके पीछे चलना शुरू हो गई ये समझते हुए कि वो सच बोल रहा है आपके साथ। ठीक है, अब वो पता नहीं कहाँ ले गया आपको तो आप तो फिर मस्जिद नहीं पहुंच सकेंगे ना, क्योंकि आपने उस पागल दीवाने को जो है वो फॉलो करना शुरू कर दिया। यही मामला हमारा भी है कि हम पागल दीवाने जो इंसान है, जो कि अल्लाह का इनकार, अल्लाह के रसूल का इनकार, तो वो पागल नहीं होगा तो और क्या होगा? ठीक है, हम उसको तबाह करते हैं, कहते हैं हम मंजिल में पहुंच जाएंगे, यानी जन्नत में पहुंच जाएंगे हम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो महज भी असल ख्यालात पे चलते हैं और अकवाल में बिल्कुल कयासी बातें करते हैं, यानी कयास आराइयां करते हैं, और उनके मुकाबले में बाज़ बंदगाने खुदा राह पर भी हैं, यानी ऐसा नहीं है कि जमीन में सारे ही गुमराह हैं, सारे ही जो है वो ऐसे लोग हैं, बल्कि नहीं, कुछ लोग हैं। ठीक है, वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, सारे के सारे इंसान खसारे में है ना, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب انہیں سے exempt وہ لوگ ہیں جو کہ آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی ہیں اور باليقین آپ کا رب ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی بتلائی ہوئی راہ راست سے بے راہ ہو جاتا ہے وہی ان کو بھی خوب جانتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کو بالکل پتا ہے کون راہ راست پر ہے کون گمراہی پر ہے. جو اس کی بتلائی ہوئی راہ پر چلتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی بتلائی ہوئی راہ پر چلتے ہیں. وہ عالم بالمہتدین, پس گمراہوں کو سزا ملے گی, راہ والوں کا انعام و اکرام ہوگا. تو اس ٹاپک کے اوپر ہم نے جمعے کے بیان کے اندر کافی ساری تفصیلی بات کر لی تھی کہ یہ جو دنیا میں لوگوں کی اکثریت ہے نا, یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہونے والی ہے. ٹھیک ہے, تو جب دنیا میں لوگوں کی اکثریت ٹھیک نہیں ہونے والی ہے تو دنیا کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ کیونکہ دنیا کو تو انہی لوگوں نے بسانا ہے نا جو کہ اس کے اوپر رہتے ہیں. اب انہوں نے جو ہے وہ کبھی بات ہی نہیں مان کر کے دینی ہے, تو پھر جس جگہ وہ رہتے ہیں تو اس جگہ کو انہوں نے کیسے اچھا بسانا ہے, کیسے اچھا کرنا ہے نا. ٹھیک ہے, تو وہ یہی ہے, ایسے لوگ جو ہیں پھر دنیا کو اچھا بنانے کی ان کی تعریف یہی ہوتی ہے کہ بتیوں سے سجا دو, قمقمے لگا دو, عمارتیں بنا دو, اور جو ہے وہ برج بنا دو, اور جو ہے وہ پارکس بنا دو, اور فلانی چیز بنا دو. پہلے جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جو نیچرل ہیبیٹیٹ تھا اس کو ڈسٹروئے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو نیچرل فارسٹ تھے ان کو ڈسٹروئے کرتے ہیں, ان کو کاٹ دیتے ہیں, پھر اس کے بعد آ کے پارک بناتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے نا, اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پارک اور فارسٹ نہیں بنائے تھے وہاں پہ آ کر کے جو ہے وہ گرینری لگانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے دنیا کو بڑا خوبصورت, یہ ان کے نزدیک دنیا کی خوبصورتی ہے, دنیا کی اچھائی ہے. ٹھیک ہے, جو دنیا کی اچھائی ہے اس کا تعلق دنیا کے انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انسان اچھے تو وہ جگہ اچھی, اور انسان اچھے نہیں تو پھر آپ کتنی ہی درخت لگا لیں اور نہریں بنا لیں اور جو ہے وہ قمقمے سجا لیں, وہ جگہ تو پھر اطمینان سکون والے نہیں ہو سکتی ہے نا. تو تعلق تو انسانوں کے ساتھ ہے نا, اچھائی اور برائی کا. لیکن انسانوں کو تو انہوں نے کیسے کیوں کیسے اچھا بنائیں, جب یہ خود اچھے نہیں ہے تو یہ انسانوں کو کیسے اچھا بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے دنیا جو ہے نا اس نے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہونا. اس دنیا کی مثال آپ سے معذرت کے ساتھ کہ ہم نے کافی ایکسٹرا ٹائم لے لیا ہے, لاسٹ تقریباً 1 گھنٹے کی ہونے والی ہے, تو بس ایک مثال اگر آپ اجازت دیں, خیر آپ کیسے اجازت دیں گے, خود ہی اجازت لے لیتے ہیں آپ سے. تو ایک مثال جو ہے نا وہ, کیونکہ کل ہی ایک دوست سے بات ہو رہی تھی, ان کے سامنے یہ بات ساتھ نے کری تھی کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک سمندر ہو, ٹھیک ہے, اوشن. ٹھیک ہے, اب وہ اوشن آپ کو پتا ہے نا کتنا اس کے اندر پانی ہوتا ہے, کبھی کشتی میں گئی ہوں گی تو اندازہ ہوگا کہ یعنی چھوٹا سا پونڈ نہیں ہوتا, وہ بہت بڑا ہوتا ہے اوشن, بہت پانی ہوتا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو آپ کشتی میں ہیں, اللہ کے فضل سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کشتی بھی بٹھا دیا. ٹھیک ہے, اور آپ جو ہے وہ اوشن میں, آپ کی کشتی جا رہی ہے سمندر میں. ٹھیک ہے, اب آپ کو سمندر میں نظر آئے کہ جی بہت سارے انسان جو ہے نا وہ ڈوب رہے ہیں, ایک دم سے آپ کو نظر آئے کہ بہت سارے انسان جو ہے وہ ڈوب رہے ہیں سمندر کے اندر. ٹھیک ہے, تو اب آپ یعنی خیر خواہی کے جذبے سے مامور ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ بھئی انسانوں کو بچا لیا جائے, ٹھیک ہے, کسی طرح سے میں بس انسانوں کو بچا لوں. تو اب اس کے کیا راستے ہیں, کیا طریقہ ہے انسانوں کو, کیونکہ اب یہ آپ کو پتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ سمندر کے اندر تو زندہ نہیں رہ سکتا, سانس نہیں لے سکتا, تو وہ سارے مر جائیں گے وہاں پہ. ٹھیک ہے, تو اب آپ ان کو بچانا چاہتی ہوں تو کیسے بچا سکتے ہو, کیسے بچائیں گے بھی؟ یہ ہم آپ سے سوال کر لیتے ہیں. ان تمام انسانوں کو جو کہ ڈوب کے مر جائیں گے سمندر کے پانی میں, آپ کیسے بچا سکتے ہو, طریقے بتائیں, یہ ہم آپ سے پوچھ لیں. چیٹنگ کی گنجائش نہیں تھی ویسے, لیکن چلے آپ نے کر لیا تو, لیکن اس لیے کیا کل گھر والوں سے آپ کی بات ہوئی تھی تو بالکل مذاق کر رہا تھا. انہوں نے ایک حل بتایا, یہ ٹھیک ہے, एक हल बताया, बिल्कुल सही हल बताया कि भाई आप एक एक करके उनको कश्ती में लेकर के आएंगे, कश्ती में सवार करेंगे। और दूसरा हल, एक और भी हल है ना इसका, दूसरा हल भी तो बताया ना, जिस कश्ती में आप सवार हैं उसमें सवार करने की उनको कोशिश करेंगे, आप उनसे कहेंगे कि कश्ती में सवार हो जाओ। हाँ मतलब कश्ती में सवार करना, लाइफ बोट्स। लेकिन एक और भी तो हल है, एक और भी तो बचाने का रास्ता है, वो हम आपसे पूछ रहे हैं, उनको तैरने का तरीका बताकर। माशाल्लाह, लेकिन हमने मिसाल भी ना पहले आपको ओशन की दे दी थी, ठीक है? तो ओशन में जो है ना वो कितना ही तैरने का आप तरीका उनको, पहली बात तो आप उनको सिखाएंगे कैसे, आप खुद तो कश्ती में, पहले आपको तैरने का उनको सिखाने के लिए तो आपको खुद समंदर में उतरना पड़ेगा, ठीक है? तो तैरने का तरीका आप सिखाएंगे कि ताकि वो कश्ती में सवार ना हो ना, वो वहीं पे किसी तरह से तैर करके बच जाए। भाई ओशन है, ओशन में नहीं तैर करके वो बच सकता, ठीक है? दूसरा हल, हाँ दूसरा हल ये है कि समंदर को खाली करने की कोशिश करें, समंदर में से सारा पानी जो है वो आप सक कर लो, ठीक है? समंदर को खाली कर दें पानी से, तो वो जितने लोग हैं ना समंदर के अंदर वो सारे के सारे बच जाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि समंदर इटसेल्फ तो उनको नहीं मारता ना, वो तो समंदर का पानी है वो उसको मारता है ना, तो आप सारे के सारे पानी को जो है वो समंदर से बाहर निकाल दें तो सारे इंसान बच जाएंगे, ठीक है? तो कौन सा रास्ता जो है वो इख्तियार करना चाहिए? समंदर को पानी से साफ करने का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, कि लोगों को एक एक करके कश्ती में सवार करने का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, ठीक है ना? अब इसके लिए अगर आप अपनी अकल शरीफ को इस्तेमाल करें, तो अकल शरीफ भी वैसे यही कहती है कि समंदर को नहीं खाली कर सकते, ठीक है? वो हमारे बस में नहीं है, समंदर समंदर है, वो समंदर ही रहेगा, ठीक है? और अकल के अलावा दूसरी तरीका क्या होता है? नकल को इस्तेमाल करना। नकल यानी किसी और को देखें जिसने वो ये काम आपसे पहले किया था, उसको देखें और उसी के काम को जो है वो आप नकल करना शुरू कर दें, ठीक है? इसको कहते हैं नकल इस्तेमाल करना। एक होता है अकल इस्तेमाल करना, एक होता है नकल इस्तेमाल करना। तो नकल इस्तेमाल करेंगे तो फिर किसको देखना होगा? आपसे पहले जो लोग दुनिया में आए हैं, जिन्होंने इंसानों को बचाने की मेहनत करी, उन्होंने ये मेहनत कैसे करी, ठीक है? तो आपको ये नजर आएगा कि उन्होंने भी वन पर्सन एट अ टाइम, वन पर्सन एट अ टाइम, वन पर्सन एट अ टाइम, ठीक है ना? एक एक को कश्ती में सवार किया, एक एक को कश्ती में सवार किया, एक एक को कश्ती में सवार किया, ठीक है? जितने सवार हो गए उतने बच गए, और जितने सवार नहीं हो सके उतने गए, ठीक है? तो अगर आप समंदर को खुसर से ताबीर करें, खुसर खसारा नाकामी, ठीक है, और कश्ती में सवार होने को आमनू से आमनू, ठीक है, तो फिर सूरह असर की यह तफसीर बन जाती है कि इन्नल इंसान लफी खुसर, सारी की सारी इंसानियत जो है वो समंदर के अंदर है, वो खसारे के अंदर है, सिवाय उसके कि जो कि ईमान लेकर के आया, यानी कश्ती पे सवार जो नीचे उनको आवाजें दे रहे थे और बाकायदा रस्सियां भी डाल रहे थे या फिशिंग लाइंस भी डाल रहे थे, कोई चीज ऐसी डाल रहे थे, लाइफ लाइन डाल रहे थे, ठीक है, और उनको बता रहे थे कि तुम मर जाओगे, तुम नहीं रह सकते जिंदा, तुम सरवाइव नहीं कर सकते समंदर के अंदर, तुम मेरी इस लाइफ लाइन को पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, ठीक है, मैं तुम्हें खींच करके कश्ती पे सवार कर दूंगा, ठीक है? लेकिन लोग थे कि कहते हैं कि नहीं, हमें तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें नजर आ रही हैं यहाँ पे, तो हमें बड़ी खूबसूरत किस्म की मछलियां भी नजर आ रही हैं, और हमें तो जो है कोरल रीफ, इतना खूबसूरत कोरल रीफ होता है जो कि समंदर के अंदर होता है, हमें वो भी नजर आ रहा है, हमें तो यहाँ पे बड़ा अच्छा स्विमिंग का माहौल मिल रहा है, हमने तुम्हारी लाइफ लाइन को नहीं पकड़ना। तो वो कौन हो गए? वो काफिर हो गए। और जिन्होंने उस लाइफ लाइन को पकड़ लिया, बात को मान लिया, ठीक है, और इस बात का इंतजार नहीं किया कि जब उनकी सांस लेने की सलाहियत खत्म हो जाएगी और बिलाखिर वो मर जाएंगे, उसका इंतजार नहीं किया, बल्कि उससे पहले ही पकड़ लिया उस लाइफ लाइन को, वो कौन हो गए? आमनू, ठीक है? तो कहने का मकसद ये कि यही तरीका है, यही तरीका है दीन की मेहनत का। वन पर्सन एट अ टाइम, ठीक है। यानी ये समंदर को खाली करना जो है ना, ये दीन की मेहनत का तरीका नहीं है। अल्लाह ताला ने इस समंदर को ऐसा नहीं बनाया कि आप उसको खाली कर सके, नहीं कर सकते, ठीक है। तो पूरी दुनिया की इस्लाह की जो है ना, वो फिक्र करने की बजाय जो आपके हाथ लगता है, जहां तक आपका एक्सेस है, क्योंकि जैसे आप जिस कश्ती में बैठे हुए हैं तो आप पूरे समंदर में तो आप लाइफ लाइन डाल भी नहीं सकते, ठीक है ना। जो आपके कश्ती के करीब लोग हैं आप वहीं तक रसाई कर सकते हैं ना, उन्हीं को जो है वो रस्सी डाल करके आप कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं ना कि मेरी रस्सी को पकड़ दो, ठीक है। तो यही है तरीका दीन की मेहनत का, अपने करीब वालों के ऊपर मेहनत करनी होती है, दूर वालों के ऊपर जो है ना वो उनके लिए आप बेशक दुआएं करें अच्छी तरीके से कि अल्लाह उनके लिए भी कोई कश्ती भेज दे, अल्लाह उनको भी जो है वो कश्ती वालों की बात मानने की तौफीक अता फरमा दे। लेकिन मेहनत जो है ना वो आप करीब वालों के ऊपर ही कर सकते हैं, लेकिन अब जब तक वो लाइफ लाइन को नहीं पकड़ेंगे तो उस वक्त तक वो फिर भी नहीं बचेंगे। आप कितनी ही रस्सियां डाल दें, पकड़ने वाला ही बचेगा, जो पकड़ने से इनकार कर देगा वो नहीं बच सकता है, ठीक है। बहरहाल ये है जमीन के अंदर बसने वालों का लाभ। बात की समझ, अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।